ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्ण सुधामुपगति धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्क धुना उदितः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम से ये पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 2 असुरराज हिरण्यकशिपु श्लोक संख्या 38। श्लोक संख्या 38। अहो वयं धन्यतमा यदत्रह त्यक्त्वा पितृभ्यां न विचिन्तयाम अभक्ष्यमाणा अबला ब्रुकादिभिः स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। ओहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयाम अभक्ष्यमाणा अबला ब्रुकादिभिः स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। शब्दार्थ अहो ओहो वयम् हम सब धन्यतमाः अत्यंत भाग्यशाली जात क्योंकि अत्र इस समय त्यक्ता असुरक्षित अकेले छोड़ी गई पितृभ्याम पिता तथा माता दोनों के द्वारा न नहीं विचिन्तयाम चिंता करते अभक्ष्यमाणा न खाई जाकर अबला अत्यंत निर्बल ब्रुकादि भी भेड़िया तथा अन्य हिंस्र पशुओं द्वारा सह वह भगवान रक्षिता रक्षा करेगा रक्षति रक्षा कर चुका है जह जो ही निश्चय ही गर्भे गर्भ के भीतर अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, यह कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। निसंदेह है हम अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि यद्यपि हम बालक है और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल है तो भी हिंसक पशुओं ने न तो हमें खाया न विनष्ट किया। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। तात्पर्य, जैसे कि भगवद गीता के 18वें अध्याय की 61 नंबर श्लोक में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार भगवान सबों की रक्षा करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार भोगने के लिए जीव को विभिन्न शरीर प्रदान करते हैं। सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से होता है, अतएव हमें जीव के जन्म तथा मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर द्वारा नियोजित होते हैं। भगवान कृष्ण भगवद्गीता की 15वें अध्याय की 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मनुष्य को चाहिए कि हृदय में स्थित भगवान की आज्ञानुसार ही कर्म करें, किंतु जीव स्वतंत्र होकर कर्म करना चाहता है, अतः भगवान उसे कर्म करने तथा फल का अनुभव करने की सुविधा देते रहते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर दो और केवल मेरी शरण में आओ। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता उसे इस भौतिक जगत का भोग करने की सुविधा दे दी जाती। भगवान बद्ध जीव के रुकने के बजाय भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे परिपक्व अनुभव होने पर अनेक जन्म जन्मांतर के बाद बहुनांग जन्म नामंते वह यह समझे कि वासुदेव के चरण कमल के शरण ग्रहण करना ही सारे जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयाम अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। निसंद है हम अत्यंत भाग्यशाली है क्योंकि यद्यपि हम बालक है और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल है तो भी हिंस्र पशुओं ने न तो हमें खाया न विनष्ट किया। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता की गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। ये वचन कौन कह रहे हैं? किसकी वचन है? पिछले श्लोकों से शुरुआत हुआ, जमराज बोल रहे हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप कहानी कहेगी सुना रहा कौन? हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप एक उपमा प्रस्तुत करके ही आपने जो कि भाई हिरण्याक्ष की वध के वध से शोक संतप्त परिवार वर्गों को जैसा उसके अपने माँ अदिति भातृपत्नी कौन उसका भाभी भी है कौन ऋषा भानु और हिरण्याक्ष की सारे पुत्रों और संपूर्ण समस्त परिवार वर्ग और कई राक्षस कुल में सब दुखी थे हिरण्याक्ष की वध में। हिरण्याक्ष अत्यंत प्रतापी था, यहाँ तक कि बोली महाराज को जो दान मांगने गए बामन देव भी उसकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बामन देव की कहते हैं, बामन देवी कहते कि तुम्हारे वंश में बोली महाराज को मैंने कहते कि तुम्हारे वंश में हिरण्याक्ष एक इतनी प्रतापी बना अकेले ही एक गदा लेकर हाथ में पकड़कर गदा घुमाते घुमाते तीनों लोक में भ्रमण करके आया, कोई भी उसके सामना करने के लिए आया नहीं, सभी भय में छुप गए हैं। तो इसलिए इतने प्रतापी था हिरण्यक्ष। तभी उन्होंने समुद्र में देखा कोई तो स्थल भाग में कोई भी उसके साथ टक्कर देने के लिए कोई साहस नहीं कर रहा है। ऐसे घुमा लास्ट गए गए वरुण देव के पास है, वरुण राजा वरुण देव के पास जाकर उनको ललकारे जो देख ले। वरुण देव कहे कि हम तो बुढ़ा हो गए, अभी वृद्ध व्यक्ति अभी युद्ध हम नहीं करते हैं, अभी युद्ध बुद्ध करना छोड़ दिए, तुमको तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला थोड़े दिन में ही तुम्हारे अहंकार को नष्ट करेगा है, चिंता मत करो। देखिए वरुण देव भी युद्ध करने के लिए तो राजी नहीं हुए, बेचारे क्या करें बड़े तभी क्रोधित होकर पृथ्वी को उखाड़ लिया है। पृथ्वी को उखाड़ के पूरा पानी के अंदर जब मैंने जल गर्भोदक सागर में लेकर डाल दिया तो ब्रह्मा जी को चिंतन आया। ब्रह्मा जी सृष्टि के उपदेश सृष्टि करने के लिए उपदेश दे रहे थे किसको? स्वयंभू मन को। और स्वयंभू मन पर कहाँ सृष्टि करेंगे? वो पृथ्वी नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान को स्मरण कर रहे थे उस समय उनको एक छींक आया, जोर से, उसमें से कौन प्रकट हुए? बराहदेव प्रकट हो गए। श्री बराह अवतार में आकर भगवान हिरण्याक्ष, भगवान बराहदेव ने हिरण्याक्ष को वध किया। तो इसी से हिरण्यकश्यपु कह रहे कि मेरे भाई तो वीरगति को प्राप्त किया है, उसके लिए तुम लोग क्यों शोक कर रहे हो? हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवद गीता सुनाया है पूरा परिवार वर्गों को सब पूरे आत्मज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ऐसे ही तो ऐसे ही ये ज्ञान तो देखा कि ऐसे कहने से पर इनको सांत्वना नहीं हो रहा है, फिर भी रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए वो पुराणों में से कोई पूर्व पुरातन इतिहास से एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, एक कहानी उपमा के रूप में लेकर तो उसको बोल रहा है कि देखो तुम्हारा जैसे अभी स्थिति है, माँ अदिति और भाभी और भातीजी जैसे आप लोग का अभी स्थिति है, ऐसा ही स्थिति पहले भी कभी था, किसी की था है? तो उन्होंने कहानी कह रहा है कि एक राज्य था, उसके नाम था उशीनर। उशीनर नाम के राज्य में सुजज्ञ नाम के एक राजा शासन करता था, और शत्रुओं के आक्रमण से युद्ध करने के लिए राज्य को रखे बने वो राज्य के बाहर गया और उनके साथ युद्ध करते करते शत्रुओं के हाथ से उसकी मृत्यु हो गया। लेकिन अत्यंत क्षत्रिय उचित वीरता को प्रदर्शन करते हुए अपने ऊँटों को दांत में काटते हुए वो युद्ध स्थल में शरीर त्याग दिया, शरीर में कई क्षत विक्षत के चिन्ह दिखाई जा रहा था। तो इस स्थिति में जब ये उसके पत्नियां जो कि वो सुजज्ञ की जो रानियां थे, अपने पति को इस प्रकार स्थिति में देखकर वो युद्ध क्षेत्र में जाकर ही उस पति के शव को लेकर रो रहे थे, चारों साइड में घिर कर इसको रो रहे थे। जैसा ही अभी ये हिरण्याक्ष की वध के कारण ये सारे परिवार वर्ग माता अदिति तथा और ये ऋषा भानु और सारे हिरण्याक्ष के परिवार वर्ग रो रहे हैं, तो वो उनकी स्थिति ऐसा ही था। सारे रानियां अपने पतिदेव सुजज्ञ के राजा सुजज्ञ के शरीर को घेर कर जोर जोर कर रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि हे पतिदेव, आप हमको ऐसा ही निस्सहाय छोड़कर कहाँ चले गए? हमको कौन देखभाल करने वाला है? हमको कौन भरण पोषण करेगा? ऐसे कहा, जोर जोर से, इतनी जोर से रो रहे थे कि सबको शवदाह करने के लिए नहीं दे रहे थे, इतनी जोर से रो रहे थे कि उसका आवाज कहां तक पहुंच गया? जमलोक तक, जमराज को सुनाई पड़ा है कि जमदूत भी आकर बार बार वापस जा रहे थे। तो देखे कि क्योंकि ये रानियां कई सारे रानी घिरी हुई है, तो उसमें कई सती रानियां थी, सती पत्नी स्त्री भी होगा, तो इसलिए जमराज ने स्वयं एक अबोध बालक का रूप धारण करके, पांच छह साल के बालक के ही रूप धारण करके उस स्थान पर पहुंचे। तो पहुंचकर उन्होंने इस स्त्रियों को रानियों को संबोधित किए, जिसकी आप श्रवण पिछले श्लोक से किए हुए हैं, पिछले श्लोक से भी 37 नंबर श्लोक में से ही प्रारंभ हुई है। जमोवाच है, जमराज ने कहा, ओहो यह कितना आश्चर्यजनक है, ये लोग जो आयु में मुझसे बढ़े हैं उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं, इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। बद्ध जीव किसी अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं, इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता, तो यह जानते हुए भी वे व्यर्थ सुख क्यों करते हैं? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, सबको विश्वास हो रहा है? हमें एक दिन एक शरीर को त्यागना पड़ेगा। इस और कोई सत्य है कि नहीं, एक सत्य निश्चित है भगवद गीता में भगवान जो कहते कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। ये पांच भूत से बना हुआ ये जो शरीर को हमें धारण जो प्राप्त किया तो ये पांचों भूत के शरीर पांचों भूत में ही मिल जाएगा है, निश्चित एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी ये संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यही है कि कोई भी मरना नहीं चाहता है, कि आश्चर्य है। अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जमालयम शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। इससे कौन सा बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? कौन कहा था? युधिष्ठिर महाराज कहे थे जख्य के प्रश्न में है, कोई मरना नहीं चाहता लेकिन एक दिन मरना पड़ेगा है। हम देखते हैं हमारे घर में, हमारे पड़ोसी में, हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक दिन न्यूज पेपर में, सब जगह रेडियो न्यूज में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीर त्यागता है, है? लेकिन फिर भी हम सोचते कि हम नहीं मरेंगे, ये सभी को एक दिन ये शरीर त्यागना पड़ेगा है? तो इसलिए जमराज ने एक बालक की रूप धारण करके असहाय बालक के समान वहां प्रकट होकर कह रहे कि अह वयं धन्यतमा यजत्रह है। यह कितने आश्चर्य है कि ये कितना है, अहो वयं धन्यतमा, हम बड़े भाग्यवान हैं। कहते अह अहो वयं, हम जैसे बालक हम धन्यतमा, हमें प्रकृत में अत्यंत भाग्यशाली है। क्यों ज्यादातर क्योंकि इस समय त्यक्ता पितृभ्यां विचिन्तयाम, हमको त्याग दिए हैं कौन, माता और पिता है, ऐसे ही हमको फ्री इंडिपेंडेंटली छोड़ दिए हैं। मैं चिंता हमारा, लेकिन फिर भी हम कोई चिंतित नहीं है, हम चिंता से रहित है। हमारे माता पिता ऐसे ही स्वतंत्र रूप में हमारा जीविका निर्वाह करने के लिए बा जीवन संघर्ष करने के लिए हमको छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी हम चिंतित नहीं है, हम तो बालक है, छोटा स्थिति मान छोटे अबोध बालक है, अल्प वयस में हमारे सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं है, माता पिता हमको ऐसे ही छोड़ दिए हैं, जाओ जहाँ जहाँ घूमो, जहाँ फिरो, कैसे भी खाओ, कैसे भी अपने स्वयं को प्रतिपोषण करो, उसके लिए माता पिता कोई इसकी जमींदारी नहीं ली। और हम जब ऐसे ही घूमते बालक, मैं अकेले ही बालक हूँ, एक ही मेरे साथ और कोई नहीं है, मेरा मैं अकेले ही ऐसे ही घूमता रहता हूँ हर जगह, अबोध बालक हूँ, और हम सर्वत्र घूम रहे हैं, जंगल में कभी इधर ऐसे ही घूमता हूँ, लेकिन कोई मुझे रास्ता में कहीं भी जब जहां भी स्थान मिलता वहीं सो जाता हूँ, कहीं भी सो जाता हूँ, मैंने कहीं भी जहां भी जो मिला खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, नदी में स्वच्छ जल पी लेता हूँ बस। लेकिन हमें ऐसे जो एकांत में अकेले ही घूमता है, घूमते रहता था, तो हमको कोई भी खाया नहीं, कभी भेड़िया खाया नहीं, अभक्ष्य माना, अबड़ा वृका आदि भी, हम जो असहाय थे अबड़ा मैंने हम निर्बल थे हम, लेकिन उस स्थिति में भी ये वृका आदि भी भेड़िया आदि जो हिंस जंतु वो हमको खाए अभक्ष्य माना, हम खाए नहीं है, क्यों खाए नहीं है, क्योंकि स्वरक्षिता रक्षति यो ही गर्भ, क्योंकि हम वो हमको रक्षा करता था, कौन रक्षा करता था, रक्षति जो ही गर्भे, जो माँ की गर्भ में हमें रक्षा किया था। इस श्लोक में पहला लाइन की ऊपर टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ओहो वयं धन्यतमा जदत्र, इस पहला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि अस्माकं अति अल्प वयसाम अपि यो विवेक सोपि एषां नास्ति इति सा आश्चर्यम अहा ओहो इति अस्माकं हम अभी अति अति अल्प वयस और हमारा विवेक भी पूरा नहीं है, अच्छा बुरा विचार करने की पूरा शक्ति भी नहीं है, लेकिन हमारा विवेक से भी ये लोग के इतने और नीचे गिर चुके हैं। कौन? यह बड़ा यदि वे ये जो स्त्रियां ये यदि हमसे वयोवृद्ध है, है? उनका बुद्धि हमारे जैसा भी भगवान के प्रति इनका विश्वास नहीं है। सोप ये संग नास्ती इनका भी ऐसे बुद्धि नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है। कौन कह रहे? जमराज बालक के रूप में आए, कहते इति सा आश्चर्य आहो। कहते कितने बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये जो बाबा ये जो स्त्रियां है हमसे वयोवृद्ध है, इनको जीवन का अनुभूति हो चुका है संसार की बारे में, लेकिन हम इनकी तुलना से तो अति अल्प वयस में है। 5 साल के 6 साल की बालक में हूं, लेकिन फिर भी देखो हमें सही शोकग्रस्त नहीं हो रहे, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो हमको माँ के गर्भ में रखे थे रक्षा किए हैं, वो अवश्य हमको अभी भी है रक्षा करेंगे सब स्थिति में है। सो वही हमको रक्षा करेंगे है, क्योंकि सिद्धार्थ स्वामी कहते कि अबला दुर्बला ब्रुकादिवीर भक्ष्यमाणा भयं। अबला दुर्बला किसे किसकी तरह साधारण भुख्य खाए जाते ब्रुका मैंने भेड़िया आदि द्वारा, लेकिन फिर भी वयं न चिंतयामः, फिर भी हमें इसके बारे में चिंतित नहीं है, है? तत्र है तो जो गर्भे रक्षति स्वयं सर्वत्र रक्षिता, जो हमको गर्भ में रक्षा किए थे वो अवश्य सर्वत्र हमारे रक्षा करेंगे, है? अवश्य राखी भी कृष्ण विश्वास पालन। शरणागत भक्त की पास में से विश्वास होता है, है? अनुकूल्य तो संकल्प प्रतिकूल्य तो वर्जनम, कृष्ण रक्षति इति विश्वास गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्विधा शरणागति। इनको भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति में सरल भाषा में कहते कि दैन्य आत्म निवेदन गोतृते वरण अवश्य राखीबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार षडंग शरणागति होई बेजाहार ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। नंद कुमार कृष्ण उस व्यक्ति का प्रार्थना को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उसके सारे इच्छा को पूर्ण करते हैं। कैसे व्यक्ति? जो ये शरणागति के 6 अंग को जीवन में उतार लेता है, हाँ? कम से कम यहां पर हम देख रहे कि एक ही बारे में कहते कि तुमके विश्वास पूर्ण है कृष्ण रक्षति इति विश्वास, हाँ? जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि है तुमी तो रक्षक आर पालक आमार तुमार चरण बिना आशा नहीं आर निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुमार इच्छा रे अछि निर्भर करिया। शरणागत भक्त का ये लक्षण है। जमराज वही शरणागत की प्रिंसिपल सिखा रहे हैं। ऐसे ही जो भक्त भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत होता है, शरणागत रहता है, वो संपूर्ण रूप में सभी प्रकार की भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जानता है, है? यदि भगवान किसको रक्षा करेंगे? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, विश्वास है, है? तुम्हें जो जिसको भगवान रक्षा करेंगे उसको कौन मारेगा, है? तुम्ही तो रखी बे जारे के तारे मारीते पारे तब इच्छा बस त्रिभुवन। इसको भगवान रक्षा करना चाहेंगे रक्षा कोई मार सकता है? प्रह्लाद के प्रसंग इसी प्रसंग में आएगा है, चैप्टर में ही सप्तम स्कंद में। तो हिरण्यकश्यप रखा, कुछ कर पाया प्रहलाद का है? क्योंकि कौन रखा, कौन रक्षा कर रहा है? भगवान रक्षा करते तो कितने भी प्रयास करें क्या होगा है? तो इसलिए जमराज भी स्वयं बालक के रूप में आके उनको सिखा रहे, उनके मोह को नष्ट कर रहे, सभी को ज्ञान पता है, लेकिन संसार में आकर त्रिगुणमयी ये प्रकृति की बस में आकर बहिरंग शक्ति के द्वारा मोहित होकर भूल जाता है। गर्भ है रक्षति सएव सर्वत्र रक्षिता है, ये विश्वास करने गर्भ के अंदर में जो रक्षा किया था उन्हें सर्वत्र निश्चित पे हमारा रक्षा करेगा, वो निश्चित हमारा रक्षा करेंगे है, ये विश्वास होना चाहिए। ईश्वर जो कुछ करते हैं हमारा मंगल के लिए करते हैं, विश्वास है? भगवान जो कुछ करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं, भगवान किसी का मंगल करते नहीं, क्योंकि भगवान कहते सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान तो अमंग शांतिरुच्यति, वही संपूर्ण विक्षेप से रहित होकर शांति को अनुभव कर लेता है, जिसको समझ जाता है कि भगवान सभी के एकमात्र शुभाकांक्षी मित्र है। वो जो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है, आप जो कहानी सुने होंगे ना, वो राजा मंत्री का कथा सुने ना है, राजा मंत्री शिकार में गए थे, कई बार सुने गए, और मंत्री भक्त था, जो कुछ होता है उसका मुख में एक शब्द निकलता, क्या? भगवान जो कुछ करते हैं प्राणी का मंगल के लिए ही करते हैं, उसका याद आती है, ये सब समय बोलता बोलना है उसको। तो राजा मंत्री शिकार में गए थे, तो वो राजा का ऐसे निशा तीर करते अंगूठा कट गया इधर, तो क्या बोला राजा को, नहीं बहुत दूर से खून बह रहा था, मंत्री को दिखाया, मंत्री बोला भगवान जो कुछ करते प्राणी का मंगल के लिए करते हैं। बोला अच्छा कैसा मंत्री, मेरा अंगुली पर कट गया, इतना जोर से खून निकाल रहा है और ये बोलता मंगल के लिए हुआ है। बोला अच्छा, तो गुस्सा है, बोला कि ये दो सैनिक उनके साथ में थे बड़ी गार्ड, कह के पकड़ा मंत्री को, अरेस्ट कर ले जाओ, जेल में डाल देना, लेके सीधा निकाल, मैं जब तक मैं बात में आ रहा हूँ, कैसे मंगल हो रहा देखता हूँ मैं, तो लेके उस बेचारे को डाल दिया। लेकिन यह तो राजा तो अकेला रह गया, देवरखी दोनों चले गए, पर मंत्री भी चला गया, घूम रहा था, और उसे राज्य उसी जंगल में कुछ लोग भी ढूंढ रहे थे, किसको, काली पूजक थे सो है, माँ के पास में बलि देने के लिए कोई तागड़ा आदमी ढूंढ रहे थे, देखे कि ये तो अकेला है, चारों साइड हर इड़े जंगली भाषा में कहा कि तो घिर लिए पूरे चारों साइड, बस पकड़ लिया, क्या करे, लेके पकड़े गए, लेके गए, स्नान फान करा के बस बोले कि मारक बड़ी काठ में सिर रख, चारों साइड में हथियार लेके खड़े हैं, जैसे करना पड़ेगा, और सिर रखते हैं, सिर रखे, लेकिन जो हेड पुजारी आया हेड प्रिस्ट है पूरा बॉडी को चेकअप करते, जो बड़ी रहता कहीं खंडित नहीं होना चाहिए कोई वस्तु है, बोले अरे अभी तो खून चू रहा है, अरे ये तो पूरा क्या है, शरीर कटा हुआ है, कट चुका है, ये झूठा हो चुका है, खून निकल रही है, माँ की बलि के योग्य नहीं, भागा भी बेकार का आदमी कहाँ से पकड़ के ले आया, भगा दिया। तो राजा को भी समझ में आ गया, यदि अंगुली नहीं कटता होता तो क्या कटने वाला था, अभी गर्दन कटने वाला था। तो मंत्री के बात को याद किया, तुरंत आकर मंत्री को जेल से निकाल कर कहा कि मंत्री मैं समझ गया आप जो बोले थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया आप बिना कारण से आपको क्यों अरेस्ट हुए और जेल में क्यों डाला गया, इसमें भगवान आपका कैसा मंगल किया। बोला महाराज समझ नहीं, इतने से वो 100 से ज्यादा लोग थे, हम दो तालुक पर सब पकड़ के लिए जाते थे हैं, आपका तांगुली कट गया आप सब जाता था, तो इसका बात मेरा टर्न आता था, इसलिए भगवान ने आपके अंगुली को कटवा कर और मुझे जेल में यहाँ भेज दे, राज्य यहाँ भेजकर दोनों का जान रखा है। भक्त के विचार ऐसा ही होता है, भक्त सब समय सोचता है भगवान जो कुछ करते हैं वो हमारे मंगल के लिए ही करते हैं, भगवान के स्वरूप मंगलमय है, चिंता करने से भी कुछ उपाय करने से भी किसके अमंगल करने के लिए वो कर ही नहीं सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य का भी अंधकार को दर्शन नहीं कर सकता, सूर्य सूर्य प्लान बनाएगा मैं थोड़ा अंधार को थोड़ा देखूं कैसे अंधार कैसे होता है वो कभी भी दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान भी कभी भी किसी के अनिष्ट करने के लिए भी ज्यादा क्रोधित हो जाते, किसको जान से मार डालते भी उसका अमंगल भी नहीं होता है, फिर भी उसका मुक्ति हो जाता, फिर भी वो जन्म होते संसार से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान का स्वरूप ऐसा है, वो किसी की अमंगल कर ही नहीं सकते, मंगलमय स्वरूप है। मंगल भवन है अमंगल हारी है, कभी भी किसी की अमंगल कर ही नहीं सकते, उनके स्वरूप ऐसा ही है। जमराज कहते कि देखो मेरे को इसीलिए हमको वृक आदि मैं असहाय होने पर भी अबड़ा अबड़ा माने दुर्बल स्वयं को रक्षा करने के पहले हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अकेले ही मैं घूम रहा हूँ, 5 साल 6 साल की उम्र में ऐसे ही घूम रहा हूँ, कहीं भी जंगल में कहीं भी इधर कभी शहर में ऐसे घूमता हूँ, लेकिन कभी भेड़िया व कोई हिंसा जंतु हमको कभी खाया नहीं है, क्योंकि हमको ये विश्वास है कि गर्भे रक्षति स्वयं सर्वत्र रक्षिता, जो गर्भ में माँ गर्भ में जो हमें रक्षा किया था, रक्षा करके अभी तक हम मैंने हमारा जो पालन पोषण सब कुछ वही किए हैं, इसलिए वो सर्वत्र अवश्य हमारा रक्षा करेंगे। ये कैसे है, ऐसे पूरा विश्वास के साथ मैंने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ ये वचन जमराज कह रहे हैं अबोध बालक के रूप में आकर इनको सांत्वना करने के लिए, क्योंकि ये सांत्वना नहीं होंगे तो वो मृत जीवात्मा को भी वहां से लेके जाएंगे, वो जमदूत सास नहीं करते, लेकिन स्वयं जमराज हैं, इनको सबसे मतलब सबका सत्कार भी करना है, समझाने के लिए आए हैं। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए भगवान किसी भी स्थिति में हमारा रक्षा करेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि तात्पर्य में कि भगवान सभी के हृदय में निवास करते, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन अधिष्ठति, और भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबके हृदय में रहकर सभी को वो परिचालित करते हैं। ईश्वर सर्व हृदय से अर्जुन अधिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया, स्टीयरिंग जहां घुमाते ऐसे चलते हैं, जीवात्मा आप उस मार्ग में चलते, इच्छा अनुसार भोगने जीव को ऐसे ही चलता, लेकिन भगवान अपने स्वतंत्रता के ऊपर जीव की थोड़ा स्वतंत्रता उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो जो चाहता जीव उसी को केवल पूर्ण करते हैं, जो तो उसी की इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान तो हृदय में बैठे मित्र के रूप में बैठे, परमात्मा रूप में, और बैठकर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं, जीव को समझाते हैं सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, फिर तुमको और कहीं चिंता करना पड़ेगा नहीं, लेकिन जीवात्मा मूर्खता के कारण वो सुनता नहीं है। समान वृक्ष है, एक ही वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, दो बैठे हुए समान वृक्ष में एक परमात्मा और जीवात्मा बैठा है, परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा भगवान कहते कि सुनने के लिए उनके, तो वो सुनता नहीं, इधर को मुख घुमा जाता है, दूसरे तरफ मुख घुमा के बैठता है, पक्षी सुनता नहीं, न सुन के वो अपने कर्मफल को भोगना चाहता है, संसार में सुख दुख को भोगता है। तो भगवान क्या करेंगे, भगवान कहते जो जथा मांग प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं, हम जो मेरे बात नहीं सुनता है, अब फिर जैसे ही कर्म करेगा तो उसका फिर मैं उसी प्रकार उसको फल अवश्य प्रदान करता हूँ। प्रभुपाद जी कहते कि इसलिए भगवान की स्वतंत्र दे देते, ठीक है जाओ भोग करना चाहता है तो फिर 84 लाख जोनी उसके लिए हमें भिन्न प्रकार के शरीर बना के रखते, तो जिस शरीर में जो भी वो इच्छा करता है उसमें प्रवेश करता है। जंतु देह पपत्य कर्मेण दैव नेत्रेण जंतु देह पपत्य, जैसे जैसे कर्म करेगा उसी के आधार पर उसको फिर एक एक शरीर को ग्रहण करके घूमते रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि बहुनांग जन्म नाम अंते, ऐसे बहु जन्म जन्मांतर ऐसे भ्रमण करते रहेगा, भ्रमण करते करते फिर इसको ज्ञान की प्राप्त होती तो वो समझ जाता है कि क्या वासुदेव सर्पमिति। इसलिए आध्यात्म में यदि निपट मूर्ख जो होती कर्मी कहते हैं, वो कर्म ऐसे ही कर्म करता है, कर्म अकर्म और विकर्म की संज्ञा, इसलिए प्रभु भगवान बताते हैं। जो कर्मफल की आशा भोगने के लिए इच्छा रखकर कर्म करते रहता है तो फिर ऐसे एक बात दूसरे ऐसा शरीर प्राप्त होते रहता है। कर्मफल भोगता है, जैसे कर्म करेगा ऐसे ही फल भोगेगा। इसमें भगवान का कोई दोष है? लोग दोष देते हैं, गांव में दोष देते, अरे देखो उसका उसका जो बच्चा है वो सोने का झूला में झूल रहा है और मेरे मेरे लड़का ये रास्ते की साइड में बुरी के ऊपर पड़ा हुआ है। उसकी उसका पिता जो क्या कोदाल मिट्टी को खुदाई करता है, बहुत परिश्रम करके थोड़ा धन कमाता है, वो उसमें चावल खरीद लाता है, बस पूरा परिवार खाता है थोड़ा। और एक दूसरा क्यों बैठा है, इतनी अमीर बनकर क्यों वो क्यों बैठा है? उसकी बच्चा सोने के खटली में झूल रहा है। सभी अपना अपना कर्म के कारण सो भोगते, उसके लिए कौन दाई है? भगवान दाई है? नहीं। जो जैसे कर्म करता है वो सही, क्यों भगवान तो कहते तुम सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, कहाँ जा रहा तुम, क्यों ऐसे है? लेकिन वो सुनता ही नहीं है, है? सुनता नहीं, सुनेगा तो क्या करेगा? तो फिर कर्म अपन ही है, भुंजा अपना कर्म फल भुंजाए समन है, कहे लोचन दास। स्वयं का कर्म फल को स्वयं भोगता है। कर्म फल पर जो गौर नित्यानंद के शरण में नहीं आएगा, कृष्ण बलराम के शरण में नहीं आएगा, किसको सुनेगा नहीं है, अपने मन ही स्वयं को। लेकिन ऐसे बहु जन्म जन्मांतर से भ्रमण करते करते वो फिर एक बार पहले कर्मी था, आस्ते आस्ते हैं कर्मयोगी बनता है, आस्ते आस्ते कर्म होते फिर ज्ञान के मार्ग पर आता है। ऐसे ही बहु जन्म जन्मांतर की बात है, ज्ञानी को फिर पता चलता क्या है, ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। इसलिए भगवान कहते कि चार प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन ये चार प्रकार के व्यक्तियों को भक्त कहा जाता है, चतुर्विध भजते माम जना सुकृति न। भगवान कहते हैं सुकृति नहीं, पुण्यात्मा है, भक्त शब्द नहीं यूज किए। ये भक्त जो होता तो अन्याभिलाषित शून्य है, ज्ञान कर्मादि अनापृतम। तो इसे कहे कि ये पुण्यात्मा चार प्रकार के मेरी शरण में आते हैं, चार प्रकार के जो पुण्यात्मा इनको सुकृतिवान पुरुष। लेकिन इनमें से कौन श्रेष्ठ है? ज्ञानी, ज्ञानी उत्तम मत, वो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि उसके मन में भौतिक इच्छा नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं कौन, अभी इसको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान जिसको हो जाता है, ज्ञानी किसको कहते हैं, जो ये जानता है मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं। प्रकृति के तीनों गुण कैसे कार्य करते हैं, सत रजत मंद, कैसे प्रकृति बहिरंग प्रकृति के द्वारा कैसे बद्ध ग्रस्त होता है, जो रहस्य को समझ गया है जीवन का लक्ष्य क्या है, है? लेकिन ऐसे ही ज्ञानी जो बनता है ज्ञानवान, फिर आस्ते वो होगा नहीं भक्ति, बहु जन्म जन्मांतर ऐसे ही बात वो समझ में आता वासुदेव सर्वमिति। फिर भगवान कहते समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसे ही महात्मा बड़े दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य जे मानेक शरण ब्रज, अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता उसे इस भौतिक जगत का भोग करने की सुविधा भगवान दे देते हैं। भगवान बद्ध जीव को रोकने के बजाय भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे परिपक्व अनुभव होने पर अनेक जन्म जन्मांतर के बाद बहुनांग जन्मनामंते वह यह समझे कि वासुदेव के चरण कमल के शरण ग्रहण करना ही सारे जीवों का एकमात्र कर्तव्य है, और इसको समझाने के लिए ही सारे एजुकेशन, सारे जो शिक्षा पद्धति, इसी को समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास है। जो समझा, जिसको यही ज्ञान नहीं होता तो उसको, जिसको ये समझा समझ गया, जिसको ये ज्ञान हो गया मैं कौन हूं, भगवान के नित्य सेवक हूं, है मैं भगवान के नित्य सेवक हूं, है। ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣರ ನಿತ್ಯದಾಸ್. ನಿತ್ಯದಾಸ್ ಏಕ ದಿನ ಕಾ ದೋ ದಿನ ಕಾ ಚಾರ್ ದಿನ ಏಸ ಹೀ ನಹೀ ಹಾಂ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಸದಾ ಹೀ ಇಸ್ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಯಹೀ ಹೈ ಯೆ ಭಗವಾನ್ ಬನ್ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ ಯೆ ಸದಾ ಸೇವಕ ಹೀ ಸೇವಕ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೈ ಹಾಂ ಭಗವಾನ್ ತಾ ಕೇ ಏಕಲೆ ಹೀ ಈಶ್ವರ ಹೈ ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಲೇಕಿನ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಸೋಚೇಗಾ ಮೈ ಭಕ್ಕ ಜೈಸೆ ಮಾಯಾವಾದ ಮಾಯಾವಾದಿ ಲೋಕ ಸೋಚತೆ ಹೈ ಆ ಕಹೇ ಅರೆ ಕ್ಯಾ ಸಬ್ ಸಮಯ ದಾಸ 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 ಹೈ ಆಓ ತುಮಕೋ ಶಿಖಾ ಕಾಟ ಕೇ ಔರ್ ಅಭಿ ಕ್ಯಾ ಬನಾತೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಬನಾ ದೇತೆ ಹೈ ಸಬ್ ಸಮಯ ದಾಸ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಪ್ರಭು ಬನೋ ಲೇಕಿನ್ ಹಾಮ ಪ್ರಭು ಬೋಲತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಸ್ವಯಂಕೋ ನಹೀ ಬೋಲತೆ ದೂಸರೋ ಬೋಲತೆ ಹೈ ಸ್ವಯಂಕೋ ಪ್ರಭು ನಹೀ ಬೋಲತೆ ಹಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭು ಬೋಲತೆ ಆಪ್ ಪೂಛೇಗೆ ಆಪ್ ಕೌನ್ ಹೈ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಪ್ರಭು ದೂಸರಾ ಕಹೇಗಾ ವೋ ಉಸ್ಕೋ ಪೂಛೇಗಾ ತೋ ಬೋಲೇಗಾ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ದಾಸ್ ದೂಸರಾ ಕಹೇಗಾ ಪ್ರಭು ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಹಾಮ ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಕಿ ನಹೀ ಪ್ರಭು ನಹೀ ಕಹತೆ ಹೈ ತೊ ಪ್ರಭು ಲೇಕಿನ್ ಅಮಾರಾ ಸ್ವರೂಪ ಕೇಸೆ ಹೈ ಕೃಷ್ಣರ ನಿತ್ಯ ಹಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ ಹೈ ಹಾಂ ತೊ ಇಸ್ಕೋ ಜಬ್ ತಕ್ ನಹೀ ಸಮಝೇಗಾ ಜೀವ ತಬ ಜಬ್ ತಕ ವೋ ಸರೆಂಡರ್ ನಹೀ ಕರೇಗಾ ಹಾಂ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಚರಣ ಮೇ ಶರಣಾಗತ ನಹೀ ಹೋಗಾ ತೊ ಮಾಯಾ ಕಿ ಶರಣ ಶರಣ ಮೇ ರಹೇಗಾ ಮಾಯಾ ಕೆ ಅಧೀನ ಮೇ ರಹೇಗಾ ಹಾಂ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಶರಣ ಕಿಸಿ ನಾ ಕಿಸಿ ಕಾ ಶರಣ ಮೇ ತೊ ರಹೇಗಾ ಜೀವಾತ್ಮ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಹೈ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಹೋನೆ ಸೇ ವೋ ಹಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಹೀ ಹೈ ಚಾಹೆ ದೋ ಮಾಯಾ ಕಿಸಿ ಕಾ ಅಂದರ ಮೇ ರಹೇಗಾ ಬಹಿರಂಗ ನೇ ಕ್ಯಾ ಅಂತರಂಗ ಮಾಯಾ ಜೋಗ ಮಾಯಾ ಬಾ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಯಾ ಹಾಂ ಕಿಸಿ ನಾ ಕಿಸಿ ಕಾ ಏಕ ಕಾ ಅಧೀನ ಹೋಗಿ ರಹೇಗಾ ತೊ ಜೋಗ ಕಾ ಮಾಯಾ ಜೋಗ ಮಾಯಾ ಕೆ ಅಧೀನ ಮೇ ರಹೇಗಾ ತೊ ಫೇರ್ ಸೋಚ ಫೇರ್ ಉಸ್ಕೋ ಸಮಜ ಮಹಾತ್ಮಾನಂಗಸ್ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಿತ ಹಾಂ ಜೊ ಮಹಾತ್ಮ ಜನ ವೋ ದೈವೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇ ಆಶ್ರಯ ಮೇ ರಹತೆ ಹೈ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮಾನಸ ಜ್ಞಾನ್ತ್ವಾಮಂ ಭೂತಾದಿ ಅವ್ಯಯಂ ಸದಾ ಅನನ್ಯ ಮಾನಸ ಹೋಕರ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಜನ ಮೇ ಲಗೇ ರಹತೆ ಹೈ ಸೇವಾ ಪರಾಯಣ ರಹತೆ ಹೈ ಆ ದೂಸರೆ ಜೊ ಮಾಯಾಗ್ರಸ್ತ ಹೈ ತೊ ಫೇರ್ ಕ್ಯಾ ಕರೇಗಾ ಹಾಂ ಫೇರ್ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಕೆ ಅಧೀನ ಸೇ ಆನೆ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ದೂರ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಫೇರ್ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಮಾನತಾ ಹೈ ಹಾಂ ಮಿಛೆ ಮಾಯಾರ ಭಸೆ ಜಾಚ್ಛ ಭೇಸೆ ಖಾಛ ಹಾಬುಡು ಭಾಯಿ ಮಾಯಾ ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರ ಭಾಸ್ತ ಜಾಯಿಗಾ ಮಾಯಾಕ್ಕೆ ಭವಸಾಗರ ಮೇ ಭಾಸ್ತ ರಹೇಗಾ ಚೌರಾಸಿ ಲಾಖ ಜೋನಿ ಮೇ ಭಟಕ್ತ ರಹೇಗಾ ತೊ ಏಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಹೆ ಫೇರ್ ಕಭಿ ಬಹು ನಾಂಗ ಜನ್ಮ ನಾಮ ಫೇರ್ ವೋ ಹಾಂ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂದೆ ಸದ್ಗುರು ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಭ್ರಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಿತೆ ಕೌನ್ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಜೀವಿ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದೆ ಪಾಯ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ ಸಹಿ ಭ್ರಮಣ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಹಾಂ ಭ್ರಮಿತೆ ಭ್ರಮಿತೆ ಜದಿ ಸಾಧು ವೈದ್ಯ ಪಾಯ ತಾರ ಮಂತ್ರ ಬಳೆ ಮಾಯಾ ಪಿಸಾಚಿ ಪಳಾಯ ಹಾಂ ಸಾಧು ವೈದ್ಯ ಜೊ ಮಿಳೆಗಾ ಆ ಫೇರ್ ಮಂತ್ರ ದೇಗಾ ಕ್ಯಾ ಮಂತ್ರ ದೇಗಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹೈ ಕುಶ ಕರ್ನಾ ನೀ ಬೈಠ ಕೆ ಜಪಾ ಕರೋ ಹೈ ಜೊ ಮಹಾಪಾಪಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಪಿ ಹೋತಾ ತೋ ಠೀಕ್ ಸೆ ಜಪ ನೀ ಕರ ಲೇಕಿನ್ ಫೇರ್ ಭೀ ನಾರದ ಜೀ ಕಹೆ ದಸ್ಯು ರತ್ನಾಕರ ಕೋ ಕಹೆ ರತ್ನಾಕರ ಯಹೀ ಬೈಠ ಕೆ ಜಪೋ ಕ್ಯಾ ಬೋಲೆ ಈ ತೋ ಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಯುಕ್ತ ಕೋಈ ನಾಮ ಹೋಗಾ ತೋ ಭೀ ಉಚ್ಚಾರಣ ನೀ ಕರ ಪಾಯೇಗಾ ಸೀಧಾ ಸೀಧಾ ಬೋಲೆ ಬೋಲಾ ರಾಮ ಬೋಲ ಇತನೆ ಸುಂದರ ಸರಳ ನಾಮ ಹೈ ತೋ ಬೋಲಾ ಕಿ ಅರೆ ರಾಮ ವೋ ಮುಖ ಮೇ ಭೀ ಉಸ್ಕಾ ನಹೀ ಜೋ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಪಿ ಹೋತಾ ಉಸ್ಕೆ ಮುಖ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನಾಮ ನಾಮ ಪ್ರಭು ಉಚ್ಚಾರಿತ ನಹೀ ಹೋತೆ ಹೈ ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆ ಮುಖ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣ ನಹೀ ಹೋತಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಪಿ ತೋ ರಾಮ ಭೀ ನಹೀ ಬೋಲ ಪಾಯಾ ಕಿತ್ನಾ ಕೋಶಿಶ ಕರ್ನೆ ಪರ ಭೀ ರಾಮ ಇತನೆ ಸರಳ ನಾಮ ನಹೀ ಉಚ್ಚಾರ ಭೈ ಇತನಾ ಮಹಾಪಾಪಿ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನಾಮ ಹೀ ಉಚ್ಚಾರಣ ನಹೀ ಕರ್ತಾ ತೋ ಕೈಸೆ ಉದ್ಧಾರ ಕರು ತೊ ಕಹೇಗಿ ಮರಾ ಹುಆ ವೃಕ್ಷ ಕೋ ದೇಖೇ ವೃಕ್ಷ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ ಮರಾ ಬೋಲಾ ಮರಾ ಬೋಲೋ ಬೋಲಾ ಹಾಂ ಮರಾ ಬೋಲಾ ಬೋಲತೆ ರಹೋ ಬೋಲತೆ ರಹೋ ಬೋಲತೆ ರಹೋ ಹೈ ಬಸ್ ಹೇ ಬೈಠ ಜಾ ಬೈಠ ಬೋಲತೆ ರಹೋ ಕುಛ ಕರ್ನಾ ನಹೀ ಬೈಠ ಬಸ್ ಮರಾ 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 ಉಲ್ಟಾ ಜಪ್ತೆ ಜಪ್ತೆ ಬಸ್ ರಾಮ ರಾಮ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ ನಾಮ ಬಿನು ಅರ ಕಿಚ್ಛು ತೋ ನಾಹಿ ಚೌದ ಭುವನ ಮಾಝೆ ಎ ಚೌದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೆ ಅಂದರ್ ಮೇ ಔರ್ ಕೋಈ ವಸ್ತು ನಹೀ ಹೈ ಹಾಂ ಜೋಕಿ ಬದ್ಧಜೀವ ಕು ಉದ್ಧಾರ ಕರೆ ಬದ್ಧಜೀವ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಭಾ ಸಭಿ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭೀ ಹೈ ನಾಮ ಬಿನು ಅರ ಕಿಚ್ಛು ತೋ ನಾಹಿ ಚೌದ ಭುವನ ಮಾಝೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕುರ್ ಕಹೆ ಕಿ ಮೈ ಛೀನ್ ಭಿನ್ ಕೆ ದೇಖ ಲಿಯೆ ಸಬ್ ಯೆ ಚೌದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೆ ಅಂದರ್ ಮೇ ಔರ್ ಕುಛ ಭೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತು ನಹೀ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತು ಹೈ ನಾಮ है नामाश्रय करी था कह सदा है। इस कलयुग में विशेष रूप में और कोई आश्रय नहीं, केवल नाम को आश्रय करके रहो तुम उद्धार हो जाओगे है। तुम कितने बड़े पापी क्यों न हो है, अजाम ने हरिनाम में आश्रय के अजाम कितने से उद्धार हो गए, वाल्मीकि उद्धार कितने सारे दृष्टांत दी गई है। आपको कुछ भी करना नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, मूर्ख है, कुछ भी है, कितना बड़ा दुराचारी क्यों न हो, लेकिन यदि तुम्हें दस्यु रत्नाकर नाम को आश्रय करोगे, नामाश्रय करी था को सदा है। तो लेकिन किसी भी स्थिति में हमें जपा करना चाहिए, और क्योंकि कलि युग के युग धर्म है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते इव गति और कोई गति नहीं है। श्री नाम को आश्रय कीजिए, नाचो गाओ भक्त संगे करो, चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग तीनों चीज बहुत आसान है। इस्कन में बद्धजीवों को मार कहा गया, और कुछ कर नहीं सकता प्राणी। नाचना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है तो गाओ, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण कीर्तन करो, नाचो है, और भूख लग गया तो खाओ प्रसाद खाओ, क्या दिक्कत है। चैंटिंग डांसिंग एंड फिस्टिंग, और ऐसे ही नाचते नाचते कहाँ पहुंच जाओगे, गोलो कह रहे हो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, वो वही से आया है हरिनाम, आपको लेके वही पहुंचा देगा है। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।